पृष्ठ संख्या 330 जायसी की भाषा। जायसी हिंदी के सूफी कवियों के शिरोमणि हैं। ये अवधि के महाकवि हैं। उनके पद्मावत में सर्वत्र अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। पद्मावत में तत्कालीन अवधि का रूप सुरक्षित है। इसी कारण डॉक्टर श्याम सुंदर दास और सत्य जीवन वर्मा संक्षिप्त पद्मावत ने पद्मावत की अवधि को प्रामाणिक अवधि भाषा कहना युक्ति संगत माना है। डॉक्टर ग्रियर्सन पद्मावती भूमिका का कथन है कि पद्मावत में 16वीं शताब्दी में बोली जाने वाली अवधि का जीवंत रूप द्रष्टव्य है। इसीलिए भाषा शास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन के दृष्टिकोण से भी पद्मावत की भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अवधि भाषा शास्त्रियों के लिए स्वर्ग है, जहाँ उनकी रुचि की अपरिमित सामग्री सुरक्षित है। मैथिली के लिए जो स्थान विद्यापति का है, मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है, वही महत्व अवधि के लिए जायसी की भाषा का है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, पद्मावत प्राक कथन, पृष्ठ 28, पृष्ठ संख्या 331। 16वीं शती में हिंदी का प्रखर सूर्य अपने मध्यान्ह को छूने की तैयारी कर रहा था। पद्मावत की रचना उसी उत्थानशील युग में हुई। जैसा कि प्रायः ऐसे काव्यों में होता है, उस काल की भाषा और भाव समृद्धि की संपूर्ण छाप इस पर लगी हुई है। जैसी अत्यंत संवेदनशील कवि थे। संस्कृत के महाकवि बाण की भांति वे शब्दों में चित्र लिखने के धनी हैं। चित्र भी ऐसे कि जिनके पीछे अर्थों का अक्षय स्रोत बहता है। अलंकार, रस, भाव आदि की काव्य समृद्धि का तो यहाँ कोई अंत ही नहीं मिलता, किंतु कवि की सहज प्रतिभा बाहरी वर्णनों में परिसमाप्त नहीं हो जाती। वह अलंकार विधान के माध्यम से रस तक पहुँचने में सफल होती है। वही पृष्ठ 5-6। जायसी सचमुच शब्दों में चित्र लिखने की कला के अमर कलाकार हैं। अंग्रेजी के कवि ब्राउनिंग और हिंदी के कवि जायसी कल्पना जनित चित्र की पूरी रेखाओं को मानस में प्रत्यक्ष करते हुए उसका उतना ही अंश शब्द गृहित करते हैं जितना उनकी दृष्टि में चित्र की व्यंजना के लिए न्यूनतम आवश्यक होता है। पद्मावत की भाषा की अद्भुत शक्ति जायसी की पहली विशेषता है। अपभ्रंश साहित्य की शब्दार्थ परंपरा जिस रूप में विकसित होकर हिंदी को प्राप्त हुई थी, उसका पूरा स्वरूप जायसी में देखा जा सकता है। उत्तर भारत की प्रधान साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि का विकास 14वीं शती में हो चुका था। मौलाना दाऊद कृत चंदायन से यह बात स्पष्ट है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश के बहुमुखी उत्तराधिकार को अवधि भाषा ने प्राप्त किया था। अपभ्रंश की बहुमुखी अभिव्यक्ति से विकसित हुआ देश बोली का ज्वलंत रूप पद्मावत की अवधि में दर्शनीय है। कथा, पुब्बे, सुखु, झरक्की, दरक्की, लखन, तप, कलप, भूमि, नित्तु, कित्तु, खग्गी, अग्गी, जग्गी, अकथ, हथ आदि शब्द रूप अपभ्रंश परंपरा के निकटतर हैं। जायसी के शब्दों का अन्य काव्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन हिंदी के अनेक प्राचीन काव्यों से उसका संबंध जोड़ देता है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 6 पृष्ठ 6। जायसी के काव्यों में तत्सम शब्द भी प्रयुक्त हैं। तत्सम शब्दों के प्रयोग प्रायः वहीं हुए हैं जहां नामों का प्रश्न आया है। जायसी अरबी और फारसी के भी विद्वान थे, इस कारण तत्सम शब्दों में संस्कृत, अरबी और फारसी के शब्द मुख्य हैं। जायसी ने अपने प्रेम पीर की मार्मिक अभिव्यंजना और काव्याभिव्यक्ति के लिए अवध जनपद की ही बोली को चुना है। यह बोली पूर्वी अवध के गाँवों की पृष्ठ संख्या 332 बोलचाल की बोली है। इस बोली का थोड़ा विकसित रूप आज भी इस प्रदेश में बोला जाता है। यद्यपि 400 वर्षों में उसमें पर्याप्त परिवर्तन आ गया है, तथापि विद्वानों का कथन है कि उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है जो उसे पद्मावत की भाषा से दूर की ठहरा सके। ए जी शरीफ, पद्मावती भूमिका। ए जी शरीफ ने जायसी की भाषा पर विचार करते हुए लिखा है कि जायसी की भाषा वह स्थानीय बोली है जो आज भी वहाँ बोली जाती है। वही हिंदी में मुल्ला दाऊद कृत चंदायन 1389 ईस्वी से लेकर नसीर कृत प्रेम दर्पण 1917 ईस्वी तक लगभग 600 वर्षों की सूफी काव्य साधना धारा की एक अविच्छिन्न परंपरा मिलती है। इस बीच अनेक सुंदर प्रेमाख्यानक काव्यों की रचनाएं हुई, किंतु उनमें सर्वाधिक काव्य गुण संपन्न, समर्थ भाषा संपन्न तथा लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत ही है। इस ग्रंथ रत्न की अक्षय कीर्ति और महान सफलता के अनेक उपादानों में इसकी भाषा का सारल्य एवं लोकाकर्षक रूप प्रमुख है। अत्यंत सहजता और उसी के अंतराल में अर्थ गांभीर्य और भाषा समर्थता के कारण यह ग्रंथ प्रायः विद्वानों को अत्यंत प्रिय रहा है। पद्मावत का महत्व उसके सुरक्षित रूप में है, अतः जायसी की रचना में तत्कालीन अवधि का रूप बच सका है। हिंदी साहित्य के जायसी ही ऐसे पुराने लेखक हैं जिनकी कृति वास्तविक रूप में हमारे सामने है। जायसी ने तत्कालीन बोलचाल की अवधि में अपनी रचना की है। इनकी कृति स्वाभाविक बोलचाल के यथातथ्य शब्दों से पूर्ण है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ 309। भाषा की स्वाभाविकता, सरसता और मनोगत भावों के प्रकाशन की सामग्री के रूप में जायसी ने अवधि को साहित्य क्षेत्र में मान्य बना दिया। उन्होंने अवधि को साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का सफल प्रयास किया है। वही पृष्ठ 316। फारसी काव्य में जलालुद्दीन रूमी, सनाई, निजामी और हाफिज शिराजी ने जिन प्रमुख अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की है, उन्हीं का एक प्रतिनिधित्व हिंदी में कुतुबन, जायसी और उस्मान के हाथों हुआ है। खुसरो के अनंतर भारतवर्ष में भी फारसी काव्य की अनेक परंपराओं का प्रचलन हुआ। ये सूफी कवि कुरान हदीस के साथ ही अरबी फारसी के भी अच्छे ज्ञाता रहे हैं। तुलसीदास भी तत्कालीन राजभाषा फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। तुलसीदास अपने समय की राजभाषा से अभिज्ञ थे और यही कारण है कि उन्होंने अपनी कविता में स्वतंत्रता पूर्वक राजभाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी, तुलसी और उनका काव्य, पृष्ठ 250। बिंदु गए जिमी मैन के रहत एन के एन, तुलसी सत्सई चतुर्थ सर्ग, दोहा 71, पृष्ठ 135, पृष्ठ संख्या 333। और आपु एन विचारी विधि सिद्ध विमल मतिमान, वही दोहा 72, पृष्ठ 136। प्रभृति उदाहरणों से जिनमें अरबी, फारसी, उर्दू वर्णमाला के अक्षरों का भी उल्लेख है, यह तथ्य प्रमाणित है। तुलसीदास ने अपनी कृतियों में अरबी, फारसी के जितने शब्दों का प्रयोग किया है, उतने शब्दों का प्रयोग हिंदी के किसी भी महाकवि ने नहीं किया। जायसी वंशतः अरबी थे। उनके आखिरी कलाम और पद्मावत के अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। उनके काव्य में फारसी काव्य की अनेक परंपराएं मिलती हैं। पद्मावत का स्तुति खंड, साथ ही अन्य सूफी कवियों की मसनवियों का स्तुति वाला अंश भी फारसी मसनवियों की परंपरा का है। पद्मावत फारसी परंपरा के ही अंदाज पर लिखा गया प्रेम काव्य है। इसमें स्त्री माशूक है, पुरुष आशिक है। पद्मावत का शब्दकोश, उसमें प्रयुक्त मुहावरे, लोकोक्तियां, सूफियां आदि सामूहिक रूप से 16वीं शताब्दी में प्रचलित बोलचाल की अवधि का ही रूप प्रकट करती हैं। उसमें संस्कृत निष्ठ भाषा का आग्रह नहीं है। उसमें लोकवाणी की ताजगी, फ्रेशनेस, स्वाभाविकता तथा मिठास पूर्ण मात्रा में है। यदि तुलसीदास और केशवदास की भांति जायसी ने भी संस्कृत भाषा के पदों और शब्दों के प्रयोग किए होते, तो पद्मावत की भाषा कुछ दूसरे प्रकार की होती। तत्कालीन अवधि भाषा के अविकल लौकिक रूप का उस प्रारंभिक अवस्था में जैसा संवार श्रृंगार युग पुरुष जायसी ने अपनी समर्थ तुलिका से किया, वैसा गोस्वामी तुलसीदास को छोड़कर हिंदी का कोई अन्य कवि नहीं कर सका है। भाषा की समर्थता भी पद्मावत के उत्कृष्ट काव्य सौंदर्य का एक गुण है। सचमुच जायसी हिंदी साहित्य के महान कलाकारों में से हैं। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ का कथन है कि वे अपने उपदेशों को साधारण जनता के बीच फैलाने का प्रयत्न कर रहे थे, इस कारण उनकी भाषा जनसाधारण की परिष्कृत भाषा थी। इनका यही महत्व है। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य, पृष्ठ 368। इस मत में उचित और ग्राह्य इतना ही है कि पद्मावत की भाषा जनसाधारण की परिष्कृत भाषा है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी के काव्यों की भाषा भी अवधि है। बोलचाल की भाषा का इतना निखरा हुआ रूप अन्यत्र दुर्लभ है। वह बहुत ही मधुर है, पर उसका माधुर्य निराला है। वह माधुर्य भाषा का माधुर्य है, संस्कृत का माधुर्य नहीं। वह संस्कृत की कोमल कांत पदावली पर अवलंबित नहीं, उसमें अवधि अपने निज की मिठास लिए हुए है। पृष्ठ संख्या 334। अवधि की खालिस बेमेल मिठास के लिए पद्मावत का नाम बराबर लिया जाएगा। जायसी ग्रंथावली, नागरी पचारणी सभा, भूमिका, पृष्ठ 205 से 206। जायसी की अवधि भाषा सरल, सजीव, मधुर, सहज, शुद्ध और प्रवाहमयी है। उसमें सबलता, व्यंजकता और प्रभविष्णुता के गुण भरे हुए हैं। जायसी के काव्यों में प्रायः अवधि के पूर्वी रूप को ही अपनाया गया है, पर कहीं कहीं पश्चिमी हिंदी के रूप भी उसमें मिलते हैं, जैसे तू के स्थान पर तुई, जो पश्चिमी अवधि कन्नौजी का रूप है। जायसी हिंदी के सूफी कवियों के शिरोमणि हैं। वे अवधि भाषा के महाकवि हैं। उनके पद्मावत में सर्वत्र अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। पद्मावत में तत्कालीन अवधि का रूप सुरक्षित है। इसी कारण डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पद्मावत की अवधि को प्रामाणिक अवधि भाषा कहना युक्तिसंगत माना है। मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य, पृष्ठ 369। कुछ पंडितों ने पद्मावत की भाषा में ग्रामीणता का दोष देखा है। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है कि ग्रामीणता के दोष से तो इनका ग्रंथ भरा पड़ा है। इन्होंने इतने ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया है जो किसी प्रकार बोध सुलभ नहीं। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, पृष्ठ 231। वस्तुतः यहाँ रूपोद्यान, प्रफुल्ल प्राय, कलिका, राकेन्दु बिंबा बिम्बाम बना वाले चश्मे से पद्मावत की भाषा को देखा गया है। लोक भाषा की दृष्टि से जायसी की भाषा का यही गुण है, उनकी भाषा में मुहावरों, कहावतों और लोकोक्तियों के बड़े सुंदर प्रयोग मिलते हैं। सचमुच पद्मावत और चित्ररेखा में तत्कालीन अवधि का जीवंत रूप मिलता है। इन काव्यों की भाषा अत्यंत श्रुति मधुर, व्यंजनापूर्ण और सशक्त है। द्रष्टव्य: एक, पद्मावत का काव्य सौंदर्य, और दो, मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य। मंझनकृत मधुमालती की भाषा भी बोलचाल की सरल सुबोध अवधि है। मंझन ने कहा है कि उनके प्रेम की कहानी गूंगे केरी सरकरा है, खाए मुस्काए व अकत कथा कुछ कही नहीं जा सकती। उनकी भाषा भी भावों की व्यंजना में पूर्णता समर्थ है। मुहावरे जैसे पैठ ही पाप के ओबरी, बरबस होई कोकार, गए सांप का भुसनी, ठंठा वसी आदि कहावतें, लोकोक्तियां सभी लोक भाषा अवधि के रस से सिक्त हैं। कहीं कहीं तो कवि ने बड़े सहज शब्दों में बड़ी गाढ़ी व्यंजना की है, जैसे अचिजू एह हों संतत रोई, पैन गयो तुम चख सेऊ धोई। मधुमालती बड़े मर्मस्पर्शी भाव की व्यंजना कर रही है कि हे प्रिय, यह आश्चर्य कि मैं सतत रोती रही पर तुम जो नेत्रों में बसे हुए हो धोए नहीं गए। पृष्ठ संख्या 335। वह आंखों में है नया नीर के साथ धुला बहा नहीं। उस्मान कवि गाजीपुर के निवासी थे। उन्होंने चित्रावली में ठेठ अवधि का प्रयोग किया है, उस पर भोजपुरी का प्रभाव परिलक्षित होता है। शिव सहाय पाठक, मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य, पृष्ठ 396। उसमें कहीं कहीं संस्कृत, अरबी, फारसी के शब्द भी मिलते हैं। उन्होंने कहावतों का खूब प्रयोग किया है। कहावतों के प्रयोग से उस्मान की भाषा अधिक व्यवहारिक हो गई है और साथ ही उसमें भावों की सफल व्यंजना भी हुई है। उनकी भाषा पर कबीर और जायसी की भाषा की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। तुलना के लिए द्रष्टव्य कबीर वचनावली, संपादक तेज नारायण टंडन, पृष्ठ 14। हृदय भीतर दब बलय की जिन लाई होय, और चित्रावली विरह खंड छंद 1, पृष्ठ 121। विरह अगिन धुआं न प्रगट होई। चित्रावली की भाषा के विषय में गणेश प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि वह जायसी से भी अधिक परिमार्जित और प्रौढ़ है। यह तुलसी के समसामयिक थे और संस्कृत का ज्ञान यदि इन्हें होता तो इनकी भाषा प्रौढ़ता में उनके पास पहुंचती। पंडित गणेश प्रसाद द्विवेदी, हिंदी प्रेम गाथा संग्रह, भूमिका, पृष्ठ 118। यह ठीक है कि उस्मान की भाषा में अवधि भाषा का परिमार्जित और प्रौढ़ रूप मिलता है। शेख नबी के ज्ञान दीप की भाषा भी ठेठ अवधि है, पर उसमें कहीं कहीं संस्कृत तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कासिम शाह कृत हंस जवाहिर की भाषा भी अवधि है, पर उस पर ब्रज और खड़ी बोली का भी प्रभाव परिलक्षित है। आतिश, फिसाद, हसीन अता, फसाद प्रभृति फारसी अरबी भाषा के शब्द भी उसमें मिलते हैं। उनकी भाषा भी भावाभिव्यक्ति में पूर्ण समर्थ है। उन्होंने भी सीधी सरल बोलचाल की अवधि में समर्थ व्यंजनाएं की हैं, आध्यात्मिक संकेत भी दिए हैं। नूर मोहम्मद कामयाब नाम से फारसी में कविता लिखते थे। इनकी इंद्रावती की भाषा भी अवधि है। इसमें भोजपुरी और ब्रजभाषा दोनों के शब्द प्रयोग भी स्पष्ट रूप से मिलते हैं। इसमें ठेठ शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। भाषा की दृष्टि से इंद्रावती को हम प्रौढ़ कृति नहीं मान सकते। इनकी कृति अनुराग बांसुरी भाषा की दृष्टि से एक प्रौढ़ कृति है। इसकी भाषा भी अवधि ही है, पर उसमें ब्रज, खड़ी बोली और संस्कृत के प्रयोग भी मिलते हैं। ठीक ही कहा गया है कि नूर मोहम्मद ने भाषा की शुद्धता पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और अपनी रचना अनुराग बांसुरी में ब्रजी, खड़ी बोली और अवधि का घपला कर दिया। फिर भी उनकी रचना का ढांचा अवधि ही है। ब्रज और नागरी भी अब नूरानियों के मुंह में जाकर उर्दू की जुबान बन चुकी थी। निदान उनका भी समावेश नूर मोहम्मद की भाषा में हो गया और अनुराग बांसुरी सचमुच भाषा विचार युग की खिचड़ी बन गई। नूर मोहम्मद का शिया हृदय संस्कृत के स्वागत में तत्पर रहा। पृष्ठ संख्या 336। उन्होंने अपनी हिंदी रचनाओं द्वारा सिद्ध कर दिखाया है कि इस्लाम का हिंदी और संस्कृत से विरोध नहीं, अपितु उसका आग्रह है कि उसके प्रचार के निमित्त उसका स्वागत किया जाए और अपनी रचनाओं के द्वारा उस पर पहुंचा दिया जाए। पंडित चंद्रबलि पांडे, अनुराग बांसुरी, अपनी बात, पृष्ठ 48। हुसैन अली की रचना पहुपावती की भाषा बोलचाल की अवधि है, उस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। उसकी भाषा बड़ी सहज सरल है, उसे हम सामान्य कोटि की भाषा कह सकते हैं। उसमें उनके पूर्ववर्ती कवियों जैसी व्यंजकता या सशक्तता का अभाव है। शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा में भी ठेठ अवधि का प्रयोग हुआ है। उन्होंने सोठा, कवित्त, सवैया प्रभृति छंदों को भी अपनाया है। उसमें ब्रज भाषा की पूरी पूरी छाप विद्यमान है। इनकी भाषा बड़ी प्रवाहमय, व्यंजकतापूर्ण और सजीव है। शाह नजफ अली सलोनी की रचना प्रेम चिंगारी, ख्वाजा अहमद की रचना नूरजहां और शेख रहीम की रचना भाषा प्रेमरस की भी भाषा अवधि है। इन तीनों कृतियों की भाषा लालित्य और माधुर्य युक्त है। अनुवाद होते हुए भी प्रेम चिंगारी में मौलिक कृति सा आनंद आता है। शेख रहीम की भाषा लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से चुस्त और स्वाभाविक बन पड़ी है। उसमें सजीवता, समर्थता और व्यंजकता है। कवि नसीर कृत प्रेम दर्पण की भाषा बोलचाल की सीधी और सरल अवधि है, जिस पर भोजपुरी का प्रभाव लक्षित होता है। उनकी भाषा गंभीर से गंभीर भावों की व्यंजना में समर्थ है। उन्होंने मुहावरों का खूब प्रयोग किया है। उन्होंने फारसी के शब्दों के तौल पर हिंदी शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे दिल कुशा के लिए मन विकसा। अली मुराद कृत कथा कुवरावत की भाषा भी ठेठ अवधि है, पर उसमें कहली, रहली, गहली प्रभृति भोजपुरी प्रयोग भी मिलते हैं। निष्कर्ष: इन कवियों ने जनता के हृदय को छूने के लिए लोक प्रचलित कहानियां ली, लोक भाषा में उन्हें निबद्ध किया। वे अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते थे, इस कारण उनकी भाषा जनसाधारण की भाषा थी। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में सूफी मुसलमान कवियों ने प्रेम गाथाओं की रचना जनभाषा में करके जीवन के कई नैसर्गिक तथ्यों को एक साथ प्रमाणित कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि कोई अपनी वाणी का प्रसार चाहता है तो उसे जनभाषा का ग्रहण अनिवार्य रूप से करना ही होगा। चित्ररेखा एक बोल पृष्ठ छे। इसी कारण इन सूफी कवियों ने अवधी भाषा को अपनाया। उनकी अवधी श्रुति मधुर, सरल, व्यंजनापूर्ण, समर्थ और माधुर्य पूरित है। उसमें प्रवाहमयता, भावानुकूलता और लोक आकर्षकता के गुण हैं। पृष्ठ संख्या 337। इनकी भाषा में मधुरता का गुण तो मानो शब्द शब्द में अंतःसहित है। मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों के प्रयोगों से इनके काव्य भरे पड़े हैं। उनके इस पक्ष पर तो अलग से शोध कार्य किया जा सकता है। अवधी भाषा के मुहावरों और कहावतों का एक विशाल कोष ही इनके काव्यों में सुरक्षित सुप्रयुक्त है। मुहावरे, कहावतें और सूक्तियाँ इनके काव्यों में प्रायः सर्वत्र भाषा भावधारा से जल तरंगवत संपृक्त हैं। इनके प्रयोग से भाषा की प्रांजलता, प्रवाहमयता और अभिव्यंजना शक्ति में वृद्धि हुई है। इन कवियों ने केवल अर्थबोध के लिए भाषा का प्रयोग नहीं किया है, अपितु उसके द्वारा इन कवियों ने भावोन्मेष और चमत्कारपूर्ण अनुरंजन भी कराया है। इनकी अभिव्यक्ति नियत अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थों की भी व्यंजना करने में समर्थ है। इन कवियों ने अभिधा के अतिरिक्त लक्षणा और व्यंजना का भी सहारा लिया है। इनकी भाषा में सांकेतिक और बिंबाधायक दोनों प्रकार के पक्षों का उन्मेष मिलता है। दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन और उस्मान ने प्रायः भाषा के बिंबाधायक पक्ष का आश्रय ग्रहण किया है। जायसी ने चित्ररेखा में कहा है, लिखे चित्र करी कंचन बानी। इसी प्रकार की बातें उपर्युक्त कवियों ने भी कही हैं। ये कवि बाण भट्ट की तरह शब्दों में चित्र लिखने के धनी हैं। चित्र भी ऐसे कि जिनके पीछे अक्षय रस स्रोत बहता है। इसी कारण इनके काव्यों की जो हस्तलिखित प्रतियां मिलती हैं उनमें से अनेक सचित्र हैं। कुछ प्रतियां तो स्वर्ण चित्रों से अलंकृत है। चित्र भी ऐसे जो चित्रकला के इतिहास की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी भाषा की एक और विशेषता है कि वह सहज स्वाभाविक भाषा है, और इस सहज स्वाभाविक भाषा में लक्षणा, व्यंजना, अलंकार आदि के अनेक आयाम हीरक कणों की तरह अपनी प्रभाव विकीर्ण करते हैं। इस स्वाभाविकता में ही काव्य सौंदर्य के समस्त प्रसाधन अनुस्यूत हैं। सहजता में असाधारणता इनके काव्य का महत्व वैशिष्ट्य है। हिंदी के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं में भी सूफी काव्य लिखे गए हैं। पंजाबी में शेख फरीद, शकरगंज शाह, हुसैन बुल्ले शाह, अली हैदर, करम अली, करीम बख्श आदि। सिंधी में शाह अब्दुल लतीफ, सचल, रोहल आदि। गुजराती में शेख खूब मोहम्मद, शाह अली मोहम्मद, जमीन आदि। बंगला में दौलत काजी, आलाउल, मोहम्मद खातिर, साबिरित खां, मोहम्मद कबीर, हमजा आदि। सूफी कवियों ने भारतवर्ष की भाषाओं को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। हिंदी के अतिरिक्त बंगला, पंजाबी, गुजराती, सिंधी आदि भाषाओं में भी प्रचुर सूफी साहित्य विद्यमान है। दक्षिणी हिंदी में विशाल सूफी साहित्य विद्यमान है। यहाँ हम दक्षिणी हिंदी के सूफी कवियों की भाषा का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 338। दक्षिणी हिंदी के सूफी कवियों की भाषा। दक्षिणी हिंदी के सूफी कवियों ने वहाँ की बोलचाल की भाषा को साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है। वस्तुतः दक्षिणी हिंदी का विकास विभिन्न भाषा भाषी परिवारों के दक्षिण में समागम से ही हुआ है। दक्षिणी हिंदी के रूप का अनुशीलन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वह खड़ी बोली का पूर्वकालीन रूप है। इस दृष्टि से दक्षिणी का सूफी साहित्य खड़ी बोली हिंदी की अपनी निधि है। यह अवश्य है कि उत्तरी हिंदी के सूफी कवियों ने लोक भाषा अवधि के ठेठ रूप को अपनाया और दक्षिणी के सूफी कवियों ने अरबी, फारसी, बहुल हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। दक्षिणी के सूफी काव्यों में मराठी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि कई भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ कुछ ही शब्दों का उल्लेख करते हैं। मराठी: कथा हूँ सुनो कान धर लो कहो। फूल बन पृष्ठ 134। लो कहो, होय उस ठार आलम, येते ठार तबई, बहराम व गुलदाम, ठार होने, मरने, मराठी का च वाला प्रयोग भी इन काव्यों में प्रचुर प्रभुत मात्रा में मिलता है। नकों का प्रयोग भी उनके यहाँ खूब हुआ है। मराठी के अनेक वाक्य भी उनके यहाँ प्रयुक्त मिलते हैं। पंजाबी, पंजाबी के वले, वापस आना, मंगनहार दरबार शह के चले, बहुत दान ले अपने घर को वले, अमीन व दौलत कृत बहराम व गुलदाम, पंजाबी के लोड़, दिले आदि के प्रयोग भी मिलते हैं। गुजराती, छे है के अर्थ में, न छे कोई महबूब उसके मिसाल, मगर आरसी में उसी का जमाल, वजदी तुहफे आशिका। गुजराती के अंजू, गधड़ा, चाड़ी, फांटा, रावत आदि शब्दों के प्रयोग भी दक्षिणी में मिल जाते हैं। संस्कृत तद्भव शब्द, अमृत, अचरी, जालना, दीवा, चितारा, नह, अगिन, सीस आदि। संस्कृत तत्सम शब्द, संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग भी दक्षिणी हिंदी के प्रेमाख्यानों में मिलता है। ऐसे शब्दों की बहुत बड़ी सूची है। ज्ञानी, संसार, सुर, सकल, विरह, श्री, मंदिर, माया, मोहनी, पृष्ठ संख्या 339, मृग, रूप, अंत, अनंत, अपरूप, अमृत, अधर, अमल, उपचार, उत्तम, आभास, अनूप, कर्ता, कनिष्ठ, कोकिल, कुंतल, कल्पित, चीर, जनार्दन, वज्र, भ्रांत, भेदाभेद, भुजंग, भाल आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। फारसी तद्भव शब्द, दिक्कत, वाका, इनाम, साथ, बगर, हुनरवंद, मुलाजा, मुलम्मा, मना, प्रभृति शब्द बोल चाल की उस काल की भाषा से लिए गए हैं। फारसी तत्सम शब्द, दक्षिणी के प्रायः सभी कवि अरबी फारसी के आलिम फाजिल थे। उनकी भाषा में अरबी फारसी के तत्सम शब्दों की भरमार है। इसी प्रकार ब्रज और अवधि के शब्द रूप भी उनके प्रेमाख्यानों में मिलते हैं। वस्तुतः दक्षिणी हिंदी भाषा का विकास अनेक भाषाओं के मेल से हुआ है। इसी कारण उसमें अरबी, फारसी, संस्कृत, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं के प्रयोग मिलते हैं। दक्षिणी हिंदी के कवियों की भाषा प्रवाहमयी और सशक्त है। उनकी भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों, कहावतों और सूक्तियों के सुंदर प्रयोग मिलते हैं। उनकी भाषा में लाक्षणिक प्रयोग भी स्थल स्थल पर मिलते हैं। कही दाई से की बजाती है ढोला, की दीवार दर भी धरे कान दो, तोहफे आशिका, ढोल बजाना, दीवारों के कान होना आदि। बुझाओ नको तेल सु आग को, तोहफे आशिका, यहाँ पर तेल से आग बुझाना प्रयोग द्रष्टव्य है। नको मराठी शब्द है। न दिल दस्त में था, न कुछ दिल पै दस्त, तोहफे आशिका, रहिया नाक में आके सारा परान, गुलाम अली, पद्मावत। मेरा दिल उचटिया है संसार ते, रिजवान शाह, रू अफजा, पृष्ठ 21, कि कोई ना कहे छाछ अपनी खट्टी, गुलशने इश्क, पृष्ठ 43, कि होए नीर ते शीर खाज्यों उबाल, गुलशने इश्क, पृष्ठ 47। प्रभृति पंक्तियों में इन कवियों ने मुहावरों, कहावतों के प्रयोग से भाषा को अपेक्षाकृत अधिक व्यंजक बनाया है। दक्षिणी हिंदी के पुराने कवियों ने अपनी भाषा को हिंदी कहा है। यहाँ हम उन्हीं के शब्दों को उद्धृत कर रहे हैं। एक, ये हिंदी बोलू सब उस अतो के सबब, मीरांजी शमशुल उशाक कृत खुशनामा। दो, हिंदी तो जबानच हमारी, कहने न लगे हमन को भारी, बहरी कृत मन लगन, पृष्ठ संख्या 340। तीन, जेते फहमदा, जेते गुनकारा, सो आज तलक कोई इस जहां में, हिंदुस्तान में हिंदी जबान सु, इस लताफत इस छंदा सु, नज्म होर नसर मिलकर यूं बोलिया, वजही कृत कुतुब मुश्तरी। हिंदी के अलावा दक्षिणी के सूफी कवियों ने अपनी भाषा के लिए देहलवी और हिंदवी शब्दों के भी प्रयोग किए हैं। जहां हिंदवी मुजसू होर देहलवी, ना जानू अरब होर अजम मसनवी, अब्दुल कृत इब्राहिम नामा। कहा जाता है कि औरंगजेब के समय में इनका नाम दक्षिणी पड़ा। दखन में जो दखनी मीठी बात का, अदा नहीं किया कोई उस घात का, दखन की बात सुन रिया को खोल, इब्ने निशाती कृत फूल बन। वस्तुतः दक्षिण शब्द से वर्तमान बरार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर का बोध होता है। दक्षिणी हिंदी का प्रसार इसी क्षेत्र में रहा है। इसी प्रदेश की एक भाषा दक्षिणी हिंदी रही है। इस भाषा की प्रायः सभी रचनाएं फारसी लिपि में मिलती हैं, इसलिए हिंदी के विद्वानों का ध्यान उधर नहीं गया था। उर्दू के विद्वानों ने इसके साहित्य को उर्दू के अंतर्गत ले लिया है, तब जबकि इसे न तो उर्दू और न रेख्ता नाम से जाना जाता रहा है, बल्कि उसके स्थान पर इसे हिंदी और दक्षिणी नाम से संबोधित किया जाता रहा है। यूरोप में दक्षिणी मखलूतात नसीरुद्दीन हाशमी पेशनामा पृष्ठ एक। इस भाषा का जो साहित्य उपलब्ध है उसमें बहुत से अरबी फारसी शब्द अवश्य हैं, पर व्याकरण और शब्दकोश की दृष्टि से वह हिंदी का ही साहित्य है। अंतर यह है कि इसकी रचनाएं अरबी फारसी लिपि में निबद्ध हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्जिया दक्षिणी का पद्य और गद्य सम्मति पृष्ठ छः ने दक्षिणी के साहित्य को शुद्ध हिंदी का साहित्य माना है और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास ने उसे पुरानी खड़ी बोली कहा है। डॉक्टर चाटुर्जिया का कथन है कि यह साहित्य धारा वर्तमान हिंदी और उर्दू साहित्य का उत्पत्ति स्थान है और भारत के दक्षिण में जाकर यह प्रौढ़ बना, फिर समग्र उत्तर भारत पर दिल्ली की भाषा के सहारे इसका प्रभाव फैला। डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्जिया दक्षिणी का गद्य और पद्य पृष्ठ छः। केवल लिपि को छोड़कर यह सारा साहित्य बिल्कुल हिंदू परंपरा का उसी प्रकार का अनुकारी था जैसे उत्तर भारत ने आरंभिक अवधि भाषा में रचित मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावती, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी पृष्ठ 212। मौलवी मोहम्मद मुबीन कैफी ने इसे उर्दू की अपेक्षा हिंदी के अधिक निकट की भाषा कहा है। उसमें हिंदी का असर बहुत ज्यादा है और गर्मुल्क का कम। पृष्ठ संख्या 341। दक्षिणी शायरी जो उस दौर में नमूना पेश करती है उससे यह मालूम होता है कि हिंदी का असर दक्षिणी उर्दू पर पहले से वसीय हद में मौजूद था। वयक नज़र मालूम होता है कि हिंदी जबान की खसूसियात लफ्जी व मानवी तरकीब, तर्ज अदा, जज्बात, तखयल, तशबीह व इस्तारे सब कुछ दक्षिणी शायरी में मौजूद है। उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफियाए कराम का कलाम डॉक्टर अब्दुल हक पृष्ठ 46। शाह बुरहानुद्दीन जानिम ने लिखा है, ऐब न राखे हिंदी बोल, माना तो चख देख ढंडोल। प्रायः दक्षिणी के सभी कवियों ने अपनी भाषा को हिंदवी, हिंदी या दक्षिणी कहा है। इस दक्षिणी हिंदी में 14वीं सदी से 18वीं सदी तक 500 वर्षों में लिखा हुआ समृद्ध साहित्य है। अमीर खुसरो की मृत्यु के कुछ काल पश्चात दक्षिणी के साहित्य का विकास प्रारंभ हुआ। आरंभ में इसे ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज 1322 ईस्वी 1423 ईस्वी जैसे अत्यंत महिमा मंडित सूफी संत के भाव वहन का अवसर मिला। दक्षिण के अनेक शासकों यथा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अली आदिल शाह द्वितीय के साथ ही वजही, गवासी, नुसरती, इब्ने निशाती प्रभृति यशस्वी कवियों ने भी इसे अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियां आदि से भरी पूरी इनकी भाषा हिंदी साहित्य के लिए गौरव की वस्तु है। हिंदी सूफी काव्य की भाषा के रूप निर्धारण और उसके मूल्यांकन में एक बड़ी कठिनाई यह है कि प्रायः सूफी काव्यों की रचना फारसी लिपि में हुई है। फारसी से नागरी लिप्यंतर करने में प्रायः प्रतिलिपिकारों से और संपादन करने में प्रायः संपादकों से बड़ी बड़ी भूलें हुई हैं। भवन या भवन को भुवन या भूत पढ़ा गया है। कांची पाठ को कांचे पाठ। द्रष्टव्य जैसी ग्रंथावली संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त पद्मावत 291-3 डॉक्टर गुप्त ने कांचे पाठ दिया है। इसी का अर्थ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया है, कच्चे रेशम की रुई धुनकर उनके भीतर भरी गई थी। कांची पाठ आचार्य शुक्ल का अर्थ कांचीवरम के पट्ट है। डॉक्टर अग्रवाल ने रेशम की रुई धुनवाई है। वस्तुतः आचार्य शुक्ल द्वारा प्रस्तुत कांची पाठ ही शुद्ध है। डॉक्टर गुप्त ने पढ़ने में भूल की है और डॉक्टर अग्रवाल ने अर्थ भिड़ाने की भूल की है। इस प्रकार के सैकड़ों भ्रष्ट पाठ और अर्थ इन विद्वानों ने उपस्थित किए हैं, पढ़कर अर्थ का अनर्थ किया गया है आदि। वस्तुतः हिंदी सूफी काव्यों के प्रामाणिक संपादन की आवश्यकता है। प्रामाणिक संपादन होने के अनंतर ही उनकी भाषा का वास्तविक भाषा वैज्ञानिक मूल्यांकन संभव है।